Blessed Savior, Om Namah Sithavyay, Om Namah Sithavyay, Om Shuddhatmane Namah, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vachayanam, Namo Loe Savasahunam, Jeniha Kasaya Pahura, Maneyanaya Mujalam Anantatham, Gahahi Vivariyam Tam, गुणहर भडारयम वंदे। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। द्वितीय पुस्तक, उसमें जो द्वितीय अर्थाधिकार प्रकृति विभक्ति, उसमें मूल प्रकृति विभक्ति की बात हम देख रहे हैं। हम पृष्ठ संख्या 55 पर आ गए हैं। क्षेत्र की बात चल रही थी, क्षेत्रानुगम, और क्षेत्रानुगम में सामान्य से तो बता दिया कि विभक्ति वाले सर्व लोक में होते हैं, और अविभक्ति वाले लोक के असंख्यात विभाग में, असंख्यात बहुभाग में और पूरे लोक में, उसकी अपेक्षा भी बता दी। अब मार्गणाओं में घटित कर रहे हैं, तो मार्गणाओं में नरक गति में कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो असंख्यात विभाग में, लोक के असंख्यात विभाग में, ऐसा बता दिया था उन्होंने कल। इसी प्रकार सभी नरक के, फिर संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त आदि आदि अपेक्षा उन्होंने घटित करके दिखाया भी था उसको। अभी ये वही बात कोष्टक के द्वारा यहाँ समझा रहे हैं पृष्ठ 55 पर। अब ये जब क्षेत्र हम देखते हैं तो उसमें 10 अलग अलग अपेक्षाएं लगती हैं। कौन सी 10 अपेक्षाएं लगती है? मूल तीन भेद, एक स्वस्थान, एक समुद्घात और एक उपपाद, ये मूल तीन भेद। फिर स्वस्थान के दो भेद, स्वस्थान स्वस्थान, यहाँ जो उनका उपजने का, रहने का ठिकाना है, उसको स्वस्थान स्वस्थान कहते हैं। और एक है विहारवत स्वस्थान, विहार करके कहाँ तक जा सकते हैं उसको कहते हैं विहारवत स्वस्थान। जैसे देव अपने अपने स्वर्गों में, अपने अपने विमानों में रहते हैं, परंतु विहार कर कहाँ कहाँ जा सकते हैं, नीचे तीसरे नरक तक भी जा सकते हैं, पूरे मध्यलोक में आते हैं और अपने अपने विमान के ध्वजदंड तक जाते हैं, और अन्य जीव ले जाएं, अन्य देव तो ऊपर 16वें स्वर्ग तक भी जा सकते हैं। तो ये है उनका विहारवत स्वस्थान, ऐसे हर एक में समझना। फिर उपपाद यानी वो जन्म का पहला समय है, मूल शरीर छोड़ दिया और आगे गमन हो रहा है, तो जो तीन मोड़ वाले हो गए, तो उसमें बीच में जो दो समय लगते हैं, तो उसकी बात तो वहाँ उपपाद में लेना। पहले समय में, पहले समय में कितना क्षेत्र व्यापा है उसमें, उसको कहते हैं उपपाद। और जो समुद्घात की अपेक्षा है, उसमें वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, वैकरीक समुद्घात, तेजस समुद्घात, आहारक समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात और केवली समुद्घात, ये सात तो समुद्घात की अपेक्षा भेद है। अब हम इन मार्गणाओं में घटित करेंगे तो सभी नारकियों में इसमें से कौन कौन से घटित हो गए? तो अभी केवली समुद्घात तो घटित नहीं होगा, ना तेजस होगा, ना आहारक होगा, अन्य उनमें घटित हो सकते हैं। स्वस्थान उनका जो है, उनका जो कुछ विहार तो अपने अपने बिलों में होगा, जैसे देवन जैसा अन्यत्र उनका विहार नहीं होगा। अब जो दूसरा जो है पंचेंद्रिय तिर्यंचों में, ये तेजस और आहार को छोड़कर, केवली तो इनमें तो किसी में नहीं है, हाँ केवली यहाँ लिखा ही नहीं है, मोही की विभक्ति वाले है ना, इसलिए यहाँ केवली को लिया ही नहीं है, तो तेजस आहार इनमें भी नहीं है। और किसमें नहीं है? तो पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंचों में भी नहीं है, पंचेंद्रिय योनिमति तिर्यंच में नहीं है, सभी देवों में नहीं है, उपशम समय दृष्टि में नहीं है। ये उपशम समय दृष्टि में नहीं है ऐसा कहा, हमने पहले बात पढ़ी थी उपशम सम्यक्त्व और अन्य जो चार बातें एक साथ नहीं होती है, अन्य तीन। हाँ बहुत अच्छा, मन परे ज्ञान, परिहार विशुद्धि संयम, आहारक, और ये उपशम सम्यक्त्व। एक होगा तो दूसरा उस समय नहीं होगा, तो यहाँ आहारक और तेजस को भी नहीं लिया उसमें। वो बंधी हुई प्रकृतियां भले रहेंगे परंतु उसका उदय नहीं होगा, आहारक का, मन परे ज्ञान का भी वहां उपयोग रूप नहीं होगा। फिर सांसाधन और स्त्रीवेदी, स्त्रीवेदियों के भी आहारक नहीं होते। हमने मनुष्यनि को तो सब देखा था, 14वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, परंतु उनके आहारक नहीं होगा और उनके ये तेजस भी नहीं है। अब हम आगे की लिस्ट देखते हैं। पुरुष वेदी, वेदक सम्य दृष्टि, पीतलेशा वाले और पद्मलेशा वाले, उनमें तो ये सभी पाए जाएंगे, तेजस और आहारक भी उनके है। उसके बाद वैक्रियक काय योगी और विभंग ज्ञानी, तो उनमें कौन कौन से नहीं है? तो वैक्रियक काय योग जब है वो, तो उस समय वो तेजस नहीं है, उन लोगों को आहार भी नहीं है। और वैक्रियक काय योग है तो वैक्रियक काय योग में उपपाद भी नहीं है। उपपाद में कौन सा हो सकता है? मिश्र हो सकता है या कार्मण हो सकता है, परंतु ये काय योग जो है वो नहीं होगा। हाँ, और विभंग ज्ञान भी अपर्याप्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए वहां उसको भी नहीं लिया है। विकलत्रय साधारण और विकलत्रय में सा क्या है? साधारण और पर्याप्त, विकलत्रय सामान्य, सामान्य लेना, सामान्य लेना, विकलत्रय सामान्य ने पर्याप्त अपर्याप्त ऐसे दोनों, और विकलत्रय पर्याप्त, ये दो भेद उसमें लिए, तो उसमें भी तेजस आहारक वैक्रेक ये होगा नहीं। देखो वैक्रेक तो इसमें हो सकता है, किसमें? बादर वायु कायिक में, अग्नि कायिक में हो सकता है, पर विकलत्रयों में नहीं होता, इसलिए इसको नहीं लिया, वैक्रेक को भी नहीं लिया। अब जो लब्धि पर्याप्त सब एक साथ लिए उन्होंने, विकलत्रय लब्धि अपर्याप्त, ल लिखा है ना, विकलत्रय ल ने लब्धि अपर्याप्त, पंचेंद्रिय तिर्यंच लब्धि अपर्याप्त, मनुष्य लब्धि अपर्याप्त, पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्त, यानी इन जनरल पंचेंद्रियों में लब्धि अपर्याप्त। उसमें पंचेंद्रिय जब लब्धि अपर्याप्त कहते हैं तो उसमें मनुष्य भी आए, तिर्यंच भी आ गए, संगी भी और तिर्यंच में असंगी भी। बादर पृथ्वी कायिक पर्याप्त, बादर जल कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त, सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त, त्रस लब्धि अपर्याप्त। इनमें देखो सप्र है ना, सप्रतिष्ठित, ऐसा क्या कह रहे हैं आप? वो पूरा एक ही वाक्य एक ही है। हाँ, उसके बाद क्या लिखा है? हाँ, वो सप्रकार तो क्या है? सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति पर्याप्त। हाँ, तो क्या आपका प्रश्न क्या है? हाँ, समझ में है? हाँ, और त्रस लब्धि पर्याप्त, इनमें देखो क्या नहीं है? तो विहार नहीं है, विहारवत स्वस्थान नहीं है, ये सारे लब्धि पर्याप्त तक ले लिए हैं, और जो पर्याप्त भी लिए है उसमें बादर है, ये सॉरी जल कायिक है, पृथ्वी कायिक है, वनस्पति कायिक है। विहार कहाँ है? वो गमन होता है, वो उनके तो फिजिकल कारण होता है उनका, ये अधोगमन जो होता है वो उनकी स्वयं की विक्रिया से नहीं होता है, ये तो जो नीचे बहना द्रव रूप है वो नीचे बहता है, वो तो अपने जैसे सीधा है, तो बहना उसका नहीं है स्वभाव, वो तो गमन होता है ना। अभी हमने इसको ये छोड़ा, ये नीचे गए पट्टी, तो गमन करके गमन ऐसा गमन हुआ, परंतु उसका विहार हुआ कि नहीं हुआ? विहार किसको कहेंगे? हाँ, या विक्रिया से जाएंगे या विहार गति से जाएंगे तो उसको विहार कहेंगे। बादर अग्नि का एक है और बादर वायु का एक है, उनके विहार गति का उदय नहीं है, फिर भी उनकी विक्रिया होती है, तो विक्रिया से जो गमन है, तो यहाँ उनको छोड़कर अन्य बादर जीव लिए, पर्याप्त जीव लिए। कौन से? देखो, बादर पृथ्वी का एक पर्याप्त लिए, बादर जल का एक पर्याप्त लिए, और प्रत्येक वनस्पति में भी पर्याप्त जो कुछ है वो सब लिए, तो कहते हैं उनमें विक्रिया नहीं होती, उनमें विहार भी नहीं होता। ये जल का जो यहाँ से वहां बहना है, तो जहां वो ढलान होती है वहां तो बहना हुई, उसका हम कहते ना उसको, वो तो उसके फिजिकल कैरेक्टर्स है। तो देखो, उसमें स्वस्थान तो होगा उनका अपना रहने का ठिकाना, उसमें विहार व स्वस्थान नहीं पाया जाएगा। वेदना और कषाय समुद्घात भी उनमें नहीं है, अरे सॉरी है, मैं उल्टा पढ़ रही, वैक्रेक नहीं है, क्योंकि विक्रिया हमने अग्निकायिक और वायुकायिक में होती है देखा, यहाँ अन्य जीव लिए। तेजस और आहार का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो तो छठे गुणस्थान वर्ती के होता है, मारणांतिक तो है और उपपाद भी है। अब सामायिक छेदोपस्थापना जो है, तो सामायिक छेदोपस्थापना होते हुए स्वस्थान भी है, विहारवत भी है, वेदना कषाय वैक्रियक तेजस आहारक। एक बात ख्याल में रखना है, जिस समय वैक्रियक है उसी समय आहारक नहीं होगा मुनिराज को, वैक्रियक विक्रिया से उनका गमन होता है उसी समय आहारक का शरीर बनना, वो एक साथ दोनों नहीं होंगे, या विक्रिया होगी या आहारक होगा, एक के पीछे एक हो सकता है, अंतर्मूर्त के बाद फिर दूसरा हो सकता है। सामयिक छेदोपस्थापना वाले के उपपाद वाला भंग नहीं होगा, क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान छठे से लेकर नौवे तक है, इसलिए वहां जन्म का पहला समय उनमें घटित नहीं होता है। अब संयता संयत और परिहार विशुद्धि, तो उसमें भी वो तेजस और आहारक नहीं है, हमने देखा था अभी अभी, जहां परिहार विशुद्धि है उनके आहारक नहीं होता, तेजस भी उनके नहीं है, और संयता संयत क्योंकि पांचवें गुणस्थान में तो होते ही नहीं है, इसलिए उनके भी नहीं पाया जाता, और उपपाद भी वहां संभव नहीं है। सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि को वो स्वस्थान होगा, विहारवत होगा, वेदना होगा, कषाय है, वैक्रियक है, परंतु ना तेजस है, ना आहारक है, ना मारणांतिक है। मारणांतिक क्यों नहीं है? हाँ, मरण नहीं और मारणांतिक समुद्भात भी नहीं, क्योंकि मारणांतिक समुद्भात तो एक अंतर्मूर्त पहले होता है, मरण भले नहीं हुए, मारणांतिक समुद्भात तो होगा, तो ऐसा भी नहीं होता, ये तीसरे गुणस्थान की विशेषता है, ना मरण होता है ना मारणांतिक समुद्भात होता है। उपपाद का भी सवाल ही नहीं है, वहां मरण ही नहीं है तो उपपाद होने का भी सवाल नहीं है। आहारक का योग जिसके है उसके तो स्वस्थान और विहार हो तो उसको कहेंगे हम, परंतु उस समय उसके वेदना कषाय वैक्रेक तेजस नहीं होते, आहारक तो हो ही रहा है, मारणांतिक हो सकता है, क्योंकि आहार अवस्था में उसके मरण भी होता है, मारणांतिक समुद्रात भी हो सकता है। उपपाद क्यों नहीं लिया? मरण तो होता है, उपपाद क्यों नहीं लिया? ऐसा नहीं, इसका उत्तर ऐसा है कि आहारक का योग नहीं रहेगा, अपना क्राइटेरिया क्या है, आहारक का योग छोड़कर कारमाण हो जाएगा या मिश्र हो जाएगा, वैक्रेक मिश्र हो जाएगा, क्योंकि आहारक यानी मुनि है, मरण कर तो देव में जाएंगे, रुजुगति से जाएंगे तो वैक्रेक मिश्र का योग शुरू होगा, और कारमाण का योग होगा बीच में एक समय वाला भी, तो योग पलटा उनका, तो आहार का योग नहीं रहा। ख्याल में आया? उपवाद देखो, आहार शरीर किसके होता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के होता है। अब उनके आहार का योग शुरू हुआ और मरण हुआ तो मरकर कहाँ जाएंगे? वे देव में चले जाएंगे। जब मरकर मरते हैं तो दूसरे समय में उनको उपपाद होता है। अभी शरीर ग्रहण करने के पहले की बात है, उपपाद वहां होगा। तो ये उपपाद से अगर एक सीधी गति से जाते हैं तो विक्रेक मिश्र का योग चालू हो जाएगा, और मोड़ वाले जाएंगे तो कारमाण का योग होगा। तो योग पलटी हो गए ना। तो आहार का योग अवस्था में उपपाद नहीं है। आहारक मिश्र वाले के भी ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? उसमें मरण नहीं है। हाँ, इसलिए यहाँ तो मारणांतिक को हमने ले लिया था, परंतु आहारक मिश्र वाले को वो नहीं होगा, मारणांतिक भी नहीं होगा। तो उसको विहारवध भी नहीं, अभी तो बन रहा है ना। आहारक मिश्र कब है? अभी मूल शरीर में से अभी वो पुतला बनने का जो कार्य चले, शरीर पर्याप्ति अभी पूरी नहीं हुई है, तब तक आहारक मिश्र का योग है। तो अभी उसका विहार नहीं है, इसलिए विहारवत में उसको नहीं बताया। उनके उस समय वेदना या कषाय या वैक्रेयक तेजस आहारक भी अभी है नहीं ना, अभी समुद्घात नहीं हुआ है। मारणांतिक भी नहीं और उपपाद भी नहीं, एकमात्र स्वस्थान की अपेक्षा कहेंगे। सूक्ष्म सांप्राय को लिया अभी। सूक्ष्म सांप्राय में स्वस्थान तो है, विहारवत नहीं है, वेदना नहीं है, कषाय नहीं है, वैकिरिक समुद्घात नहीं है, तेजस समुद्घात नहीं है, आहारक नहीं है। मारणांतिक हो सकता है। कौन से सूक्ष्म सांप्राय में होगा? उपशम में होगा, क्योंकि क्षपक वाले को मरण नहीं है। तो यहाँ मरण होता है तो मारणांतिक समुद्घात भी होगा। तो मरण होता है तो उपपाद होगा कि नहीं होगा? तब उसका गुणस्थान, अभी गुणस्थान की बात कह सकते हैं, वहां तो योग की बात थी। अब कहेंगे सूक्ष्म सांप्राय में मरण होता है तो नेक्स्ट समय, आगे के समय में उसका चौथा गुणस्थान हो जाता है। सूक्ष्म सांप्राय संयम कहो या गुणस्थान कहो, सूक्ष्म सांप्राय संयम अगर ग्रहण करते तो असंयम में आ जाता है, चौथे गुणस्थान वाला। और गुणस्थान ग्रहण करो तो चौथे में आ जाता है, बराबर है? यानी यहाँ संयम की बात है, योग के बाद वहाँ संयम की बात करनी है। हाँ हाँ, उपशम सम्यक्त्व में विहारवत होता है, द्वितीय उपशम में हो सकेगा, क्योंकि श्रेणी चढ़कर उतर कर आया है, श्रेणी चढ़कर उतर के आया है। सूक्ष्म सांप्राय संयम है ना वहां पर, द्वितीय उपशम अकेले श्रेणी में ही है ऐसा नहीं है। श्रेणी उतर के नीचे आते हैं, छठे में है, पांचवे में है, चौथे तक उनका द्वितीय उपशम चलता है। यह मेजोरिटी तो प्रथम उपशम की बात उन्होंने की है। प्रथम उपशम हमने देखा था, प्रथम उपशम सम्यक्त के काल में विहार होगा, या विहार करके गया है और वहां उपशम सम्यक्त होता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये टेबल हमने पढ़ लिया अभी। इस प्रकार उक्त मार्गणाओं में कोष्टक के अनुसार जो पद बताए हैं, ये सूक्ष्म सांप्राय में संयम लेना चाहिए, क्योंकि वो योग के बाद वो संयम ही होगा वहां पर। जो पद बताए उन सब पदों की अपेक्षा वर्तमान क्षेत्र सामान्य लोक के असंख्यात वे भाग प्रमाण ही होता है, अधिक नहीं। इन सब में जो है ना, जो कुछ करते हैं, जहां जो एप्लीकेबल है, ये नौ पद केवली को छोड़कर नौ पद बताए हैं, उनमें जो वहां एप्लीकेबल है कहीं पर भी, उसकी अपेक्षा से कितना क्षेत्र है उनका, लोक का असंख्यात्वा भाग है। इसलिए यहां कहीं सूक्ष्म जीवों को नहीं लिया है। सूक्ष्म तो पूरा लोक है, साधारण को नहीं लिया है, यानी निगोद वो भी पूरा लोक है, सूक्ष्म में आते हैं ना वो साधारण। अब हम आगे परिहार विशुद्धि में तेजस भी नहीं है, विक्रेक भी नहीं लिए। हाँ, आप कहते आहारक नहीं होता तेज परिहार विशुद्धि में, ये तो हमने सुना था, परंतु तेजस भी नहीं होता ये अभी पता चला। नई नई बातें पता चलती, इसलिए तो स्वाध्याय चलता है ना अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं। नरक गति में बात बताते हुए उन्होंने ओह की आदेश की अपेक्षा बात शुरू की थी, जो अभी हमने 54 पृष्ठ पर पढ़ा था। और वो नरक गति में जैसे लोक के असंख्यातवे भाग हो सकता है, उस अपेक्षा से जहां जहां लोक के असंख्यातवे भाग वाला कथन हो सकता है, उनके पूरी बात उन्होंने कोष्ठक में बता दी। अब तिर्यंच गति में, तिर्यंचों में मोहनीय विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? जब तिर्यंच कहते हैं तो पूरे वो सारा लोक उसमें आता है। तिर्यंचों का रहने का ठिकाना पूरा लोक है। हम कहते हैं ना, मनुष्य कितने क्षेत्र में रहते हैं, देव कितने क्षेत्र में रहते हैं, नारकी कितने रहते हैं, तो सब में अल्प क्षेत्र किसका है? मनुष्यों का है। और सबसे जब बड़ा क्षेत्र है तिर्यंचों का। यहाँ क्या लिखा है? सर्वलोक में रहते हैं। इसी प्रकार यानी सर्वलोक में रहते हैं, यह कथन कहाँ कहाँ लागू होगा? तो कहते हैं सभी एकेंद्रिय, क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रिय तो पूरे लोक में रहते हैं। पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक, बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, ये बादर पृथ्वी कायिक पूरे लोक में कैसे रहेंगे? मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा। मारणांतिक करते तो वो तो बादर पृथ्वी कायिक अवस्था में मारणांतिक किया तो वो बादर पृथ्वी कायिक ही कहलाएंगे। अब वो सूक्ष्म में जन्म लेने वाले कहीं भी, तो पूरे लोक में कहीं भी उनका ये प्रदेश फैले हुए है, या कोई सूक्ष्म जीव उनमें जन्म लेने वाले हैं तो वो उपपाद की अपेक्षा बादर कहलाएंगे। तो इसलिए पूरा लोक घटित होता है। बादर पृथ्वी कायिक अपर्याप्त, अपकायिक बादर, अपकायिक बादर, अपकायिक अपर्याप्त, तेजस कायिक बादर, तेजस कायिक बादर, तेजस कायिक अपर्याप्त, वायु कायिक बादर, वायु कायिक बादर, वायु कायिक अपर्याप्त। अब सूक्ष्मों का ले लिए, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक अपर्याप्त। सूक्ष्म अपकायिक, सूक्ष्म अपकायिक पर्याप्त, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक, सूक्ष्म तेजस कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म तेजस कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक, सूक्ष्म वायु कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वायु कायिक अपर्याप्त, वनस्पति कायिक बादर वनस्पति कायिक पर्याप्त, बादर वनस्पति कायिक अपर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति कायिक, सूक्ष्म वनस्पति कायिक पर्याप्त, सूक्ष्म वनस्पति कायिक अपर्याप्त, निगोद बादर निगोद, बादर निगोद पर्याप्त, बादर निगोद अपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद पर्याप्त, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त, नपुसक वेदी वो पूरा लोक में है। क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय वाले, ये कषाय मार्गणा की अपेक्षा ये चारों ही प्रकार के जीव। फिर मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्ण नील और कापोत ये तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि, ये कौन सी मार्गणा की बात है? मिथ्या दृष्टि सम्यक तो मार्गणा की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि, और असंगी, संगी मार्गणा में असंगी जीवों के सर्वलोक क्षेत्र होता है। इन उपर्युक्त विशेषात, इन उपर्युक्त मार्गणा स्थानों में कहां कितने पद है इसका ज्ञान कराने के लिए पहले नीचे कोष्टक दिया जाता है। कितने पद है यानी जो हमने ऊपर देखे थे विभक्ति वाले हैं, तो उसमें जो 9 पद हो सकते हैं उसमें से यहाँ किसमें कितने होते हैं उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। क्रोध, वो क्रोध करना, क्रोध हुआ, क्रोध मान माया और लोभ, तो क्रोध मान माया लोभ जहां तक है तो वहां तक ये तो सभी पद हो गए उसमें। तेजस आहारक भी होगा ना, छठे गुणस्थानवर्ती, उनके तो है वहां पर संज्वलन क्रोध मान माया लोभ नहीं, क्यों? यहाँ कषाय की बात है, कषाय मार्गणा की बात है, सूक्ष्म जीवों की बात नहीं है। सूक्ष्म जीवों की बात की, वहां मार्गणा अलग थी, वहां काय मार्गणा थी, ये सभी मार्गणाओं की बात की है। यहाँ पर देखो नीचे से जो लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन में अंत में, क्रोध मान माया और लोभ ये चार कषाय वाले, ये कषाय मार्गणा की अपेक्षा जब जीवों के हम क्रोधी मानी मायावी और लोभी ऐसे भेद करेंगे तो कौन से गुणस्थान तक पाए जाएंगे? हाँ, चारों कषाय वाले तो नौवे तक है, फिर नौवे के उर्वरित भाग में जो कुछ कम होते चले जाते हैं और दसवें में अकेले लोभ वाले हैं। तो जब हम कहेंगे कषाय वाले जीवों में इनमें से कौन कौन सी बातें होगी, तो सभी पद घटित होते हैं ना, ख्याल में है? हाँ, पूछना नहीं ख्याल में आए तो। अब सामान्य तिर्यंच, तो सामान्य तिर्यंच में अभी ये जो सभी लिस्ट बता रहे उसमें तेजस और आहारक नहीं है, नपुसक नपुसक वेदियों में भी वो नहीं होता, स्त्री वेदी और नपुसक वेदी वालों के नहीं होते। मत्य ज्ञानी, श्रुता ज्ञानी, असंयत, कृष्णादि तीन लेशा वाले, अभव्य, मिथ्या दृष्टि व असंगी, उनमें ये बाकी तो होते हैं, तेजस आहारक नहीं होते। आप कहेंगे यहां स्त्री वेदी वाले को क्यों नहीं लिया? उनमें भी तेजस आहारक नहीं होते, उनको क्यों छोड़ा यहां पर? उसको बहुत अच्छा, यहाँ क्या क्राइटेरिया है? ऐसी मार्गणा है जिसमें पूरा लोक क्षेत्र है, तो नपुसक वेद में पूरा लोक क्षेत्र घटित होता है, और उनमें कौन कौन से पद है उसकी चर्चा चल रही है। पहले हमने लोक का असंख्यातवा भाग देखा था, उसमें वो ऊपर स्त्री वेदी को लिया था 55 पृष्ठ पर, क्योंकि वहां अपने क्राइटेरिया में ऐसे विभक्ति वाले थे कि जो लोक के असंख्यात भाग में पाए जाते हैं, तो वहां तो स्त्री वेदी को लिया था, उनमें भी तेजस आहारक नहीं होता लिया था, पहले ही कॉलम ऊपर का। अब यहां किसकी बात चल रही है? ऐसी मार्गणाओं जो पूरा उनका क्षेत्र पूरा लोक है, तो उसमें नपुसक वेद का तो क्षेत्र पूरा लोक है, और उसमें कौन से पद है? तो तेजस आहारक को छोड़कर बाकी है। ख्याल में श्रुतागिन, ये हमने लिस्ट पढ़ दी। अभी 57 पृष्ठ पर आते हैं। एकेंद्रिय तेज कायिक व वायु कायिक, तो देखो विहारवत में नहीं लिया, उनके विहार नहीं है परंतु विक्रिया होगी। देखो अभी इसके ऊपर नाम डालो, पहला है वो स्वस्थान, स्वस्थान स्व स्व लिखो वहां पर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ना, वैसे स्व स्व लिखो आप, यानी वो क्या पढ़ रहे ख्याल में आ जाएगा। दूसरा जो कॉलम है उसके लिए विहार व स्वस्थान, वि स्व। तीसरा है वो वेदना, चौथा कषाय, पांचवा वैक्रीक, उसके आगे तेजस, उसके आगे आहारक, फिर मारणांतिक और उपपाद। अब देखेंगे एकेंद्रिय तेज कायिक और वायु कायिक, इसमें क्या नहीं है? तो विहारवत नहीं है, विहायो गति नाम कर्म का उनके उदय नहीं होता, तो हमें यहां से वहां गमन करते हुए जो दिखाई देता है, अरे हवा बह रही है, जल बह रहा है, अग्नि ऊपर आ रही है, तो उनका वो विहार नहीं कहलाता। तो उनमें विक्रिया तो हो सकती है, तेज कायिक और वायु कायिक लिया, और एकेंद्रिय में जब विक्रिया होती कहेंगे तो ये तेज कायिक और वायु कायिक की अपेक्षा ही एकेंद्रियों को होती है कहेंगे, अन्य एकेंद्रियों को नहीं होती। विक्रिया है परंतु वो विहाय गति नहीं, यानी विहार नहीं है, विहार नहीं है उसका। जैसे देव विहार करके जाते हैं, हम विहार करके जाते हैं, यहाँ बैठे हमारा हमेशा रहने का यहाँ है, और फिर विहार करके कहाँ कहाँ जाते हैं? देवलाली में जाए, अरे अमेरिका में जाएंगे, क्यों बहन जाना है ना अभी अच्छा, जेपी भाई साहब बोरीवली से आए यहाँ बिहार करके। तभी इसको कार के लिए भी बिहार होता है ऐसा कहेंगे क्या? वो तो उसका जो क्रियावती शक्ति के कारण वो गमन होना वो अलग बात है। ऐसे जल के, आप जल के बारे में पूछा था ना प्रश्न, जल का बहना वो विहार नहीं कहलाएगा उसका। अब आगे की लिस्ट जो है, बादर एकेंद्रिय, बादर तेज कायिक, बादर वायु कायिक, बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर तेज कायिक पर्याप्त। बादर वायु का एक पर्याप्त होना चाहिए था, ठीक है। उसमें भी वैसे ही है, विहार वत स्वस्थान नहीं है, तेजस आहारक नहीं है, बाकी तो है सब। यानी वेदना कषाय, वेदना समुद्घात है, कषाय समुद्घात है, विक्रिया है, मारणांतिक और उपपाद भी है। अब आगे वाली लिस्ट, यानी इनमें वो वायु कायिक और तेज कायिक की अपेक्षा से एक इंद्रियों को भी रखा है, और वो भी उनके अपर्याप्त अवस्था में नहीं होते, पर्याप्त अवस्था में ही विक्रिया होती है, इसलिए वहां पर्याप्त वाला भंग लिख दिया। अब आगे की जो लिस्ट है उसमें एकेंद्रिय, जब एकेंद्रिय कहते तो एकेंद्रिय कॉमा लगाना, उसमें सूक्ष्म, सूक्ष्म एकेंद्रिय लेना है, अच्छा एकेंद्रिय सूक्ष्म, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, वो इनके पर्याप्त और अपर्याप्त, यानी सभी सूक्ष्म जीव, क्योंकि उनमें वो विक्रिया भी नहीं पाई जाएगी। विहार तो दोनों में ही नहीं होता, बादर में भी नहीं है, तेज में भी नहीं है, परंतु विक्रिया उनमें थी। अब यहाँ ऐसे एकेंद्रिय लेने जिनमें विक्रिया भी नहीं होती, तो सभी सूक्ष्म जीवों में विक्रिया नहीं होती है, सूक्ष्म वायु और सूक्ष्म तेज भी में भी नहीं होती। वहां तो बादर वायु कायिक और बादर तेज कायिक को रखा था विक्रिया में, अब जो वायु कायिक और तेज कायिक में जो सूक्ष्म जीव है उनकी विक्रिया नहीं होती। पृथ्वी जल वनस्पति और निगो तथा इनके सूक्ष्म और पर्याप्त अपर्याप्त, इनमें भी विहार वत्त स्वस्थान है ही नहीं है, वैक्रिक तेजस आहारक भी इनमें नहीं होगी। यानी वहां विक्रिया होती थी, यहां नहीं होती, इसलिए ये दो ग्रुप अलग बनाए। अब जिनमें विक्रिया नहीं होती ऐसे और बादर एकेंद्रिय, बादर तेज, बादर वायु, ये तीनों अपर्याप्त, यानी ये सब अपर्याप्त लेना। कौन से? बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, यानी जिनमें विक्रिया होती है ऐसे कौन है? बादर वायु कायिक या बादर अग्नि कायिक पर्याप्त जी, तो उनके अगर अपर्याप्त हम कहते तो उसमें विक्रिया नहीं होती। तो बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त, बादर तेज कायिक अपर्याप्त और बादर वायु कायिक अपर्याप्त, ये अपर्याप्त शब्द तीनों के लिए है। बादर पृथ्वी, बादर जल, बादर वनस्पति, बादर निगोद और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, ये भले पर्याप्त हो तो भी उनके विक्रिया नहीं है, तो विहारवत भी नहीं है, विक्रिया भी नहीं है, तेजस आहारक का तो कोई सवाल ही नहीं है। हाँ? कौन सा? नीचे का कोष्टक सूक्ष्म वाला, देखो देखो आपका प्रश्न है कि ये नीचे का और ऊपर इसमें भेद क्या किया, वहां तो सभी सूक्ष्म लिए, यानी सूक्ष्मों में किसी में नहीं होता, उनके दोनों जो उनके जो पद है वो सेम है, पद सेम है, परंतु वहां सूक्ष्म है तो किसी में नहीं है। बादर होते हुए भी अपर्याप्त में नहीं, ये बताना है, ये हमारे ख्याल में आने चाहिए। जिन बादर जीवों में विक्रिया होती है उनके अपर्याप्त अवस्था में नहीं होती। बादर वायु कायिक पर्याप्त और बादर अग्नि कायिक पर्याप्तों में होती है, परंतु उनके अपर्याप्त में नहीं होती, ये बताने के लिए ग्रुप ही अलग बताया। पहला टेबल ऊपर बताया था, वहां बादर एकेंद्रिय और उनके पर्याप्त लिए, सबके पर्याप्त लिए, ये पर्याप्त शब्द सब जगह लगाना। वहां बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, बादर तेज का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त और बादर एकेंद्रिय पर्याप्त, सबके लिए पर्याप्त शब्द आया था वहां।
उसके ऊपर तो भी एक दिन बेच गए भाई भाई स्टेज में ऊपर।
हाँ
लिस्ट नंबर 3 इसी पेज में ऊपर जो होता है पहले।
हाँ
एक केंद्र बेच गए वो भाई भाई।
हाँ
वो क्या चीज है वो नीचे से मिलती जुलती है।
नीचे से मिलती जुलती है तो वहाँ पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं किया था। हाँ और वहाँ जो तीसरा पॉइंट लिखा है ना, देखो मैं फिर पहला कॉलम पढ़ रही हूँ। कौन सा बादर एकेंद्रीय पर्याप्त वाला, ये ऊपर से दूसरा। तो बादर एकेंद्रीय पर्याप्त ये पहला, यानी एक लिस्ट में से बादर तेज का एक पर्याप्त, बादर वायु का एक पर्याप्त, फिर बादर एकेंद्रीय पर्याप्त क्यों लिखा यहाँ? पहले सामान्य में लिया बादर एकेंद्रीय, बादर तेज के बादर वायु का एक, बादर केंद्रीय पर्याप्त, बादर तेज का एक पर्याप्त, फिर बादर तेज का एक पर्याप्त लिखा यहाँ। वहाँ बादर ऊपर पर्याप्त नहीं डाल के बादर एकेंद्रीय पर्याप्त लिखा है ना, उसके बदले बादर वायु का एक या एक्स्ट्रा और चाहिए, बादर एकेंद्रीय पर्याप्त और फिर बादर वायु का एक पर्याप्त और ऐड करना पड़ेगा। पहले कहीं लिखा है क्या आपके लिस्ट में, शुद्धि पत्रक में कहीं है? वहाँ ऐड करना होगा। हाँ बादर वायु का एक है, कहाँ है पर्याप्त? पहला बादर एकेंद्रीय है, दूसरा बादर तेज का एक है, तीसरा बादर वायु का एक है, पर्याप्त कहाँ है? उसके बाद ये फिर लिस्ट दोहरा रहे, पहले बादर एकेंद्रीय लिखा था अब बादर एकेंद्रीय पर्याप्त लिख रहे हैं, बाद में बादर तेज का एक लिखा है, बादर तेज का एक पर्याप्त लिख दिया है, तीसरा बादर वायु का एक लिखा है, वहाँ पर बादर वायु का एक पर्याप्त और एक बाद में ऐड करना है लास्ट में। हाँ पहले सामान्य लिखे, सामान्यों में भी जो विक्रिया होती है तो पर्याप्तों की अपेक्षा से ही होती है। ख्याल में आया क्या क्या लिखना है? बादर वायु का एक पर्याप्त, ये तेज का एक के बाद उसको ऐड करना। अब ये कोष्टक के नीचे पड़ेंगे, कोष्टक नंबर 1 के चारों कषाय वाले विहारवत स्वस्थान, ये जो 56 पृष्ठ पर शुरू हुआ है ना, वहां से बता रहे हैं। तो चारों कषाय वाले, कषाय मार्गणा की अपेक्षा जो चारों कषाय वाले हैं, उनमें विहार वत्स स्थान, वैकिरेक, तेजस और आहारक समुद्घात को छोड़कर शेष 5 पदों से सर्वलोक में रहते हैं। कषाय वाले उनके ये समुद्घात तो हो गए, विहार करने वाले लोक के कितने भाग में? पूरे लोक में तो नहीं जाते विहार करने वाले जीव, चारों कषाय वाले हैं। इतनी क्राइटेरिया लेना, सभी लेना है, यानी उनमें विहार व स्वस्थान पाया जाता है, पर विहार की अपेक्षा पूरा लोक में विहार करते हैं क्या, ये बता रहे हैं। यानी उनमें ये सभी पद पाए जाएंगे, परंतु मारणांतिक अपेक्षा, उपाध की अपेक्षा तो पूरा लोक में जाएंगे, परंतु विहार करके क्या पूरे लोक में जा सकते हैं? स्वस्थान की अपेक्षा पूरा लोक होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि पूरे लोक में वो क्रोधी मानी वो सब है ना, सूक्ष्म भी जीव है, तो स्वस्थान की अपेक्षा तो पूरा लोक होगा, परंतु विहार किन में होगा? त्रस में होगा या जो देवादि में होगा? तो विहार की जो बात है वो उनमें नहीं पाई जाएगी, पूरा लोक नहीं पाया जाएगा, लोक का असंख्यातवा भाग होगा। तो विहार करके भी पूरे लोक में नहीं जा सकते, विक्रिया करके पूरे लोक में जाएंगे नहीं जाते हैं, तेजस आहारक को भी। हाँ तो इनको छोड़कर अन्य जो 5 पद है, कौन से अन्य 5 पद है? स्वस्थान है, वेदना है, कषाय है, मारणांतिक है और उपपाद है, इनकी अपेक्षा पूरा लोक होगा। ये बात ख्याल में आई? हाँ सब में है, परंतु पूरा लोक कौन से पद की अपेक्षा है? वो करते हैं कि नहीं करते, उनमें क्रोधी मानी मायावी में सब में ये सभी समुद्घात, ये सभी नौ पद लागू होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। इनमें से कौन से अपेक्षा से पूरा लोक है और किस अपेक्षा से असंख्यात्वा भाग है? तो स्वस्थान की अपेक्षा पूरा लोक है, जहां रहते वहां वेदना और कषाय समुद्घात भी होगा, उस अपेक्षा से भी पूरा लोक है। मारणांतिक की अपेक्षा से भी पूरा लोक है और उपपाद की अपेक्षा से भी पूरा लोक है, परंतु उनमें विक्रिया की अपेक्षा, तेजस की अपेक्षा, आहारक की अपेक्षा, विहार की अपेक्षा पूरा लोक नहीं है। ये बात यहां बताना चाहते हैं। ख्याल आया इतनी बात मंजूबेन? हाँ त्रेपन पृष्ठ पर क्या लिखा है? हाँ देखो यहाँ क्या लिखा है, मैं पढ़ती हूँ तो सब लोग समझेंगे। त्रेपन पृष्ठ पर नीचे से छठी लाइन अंत में, पहले ये समुदाय सात प्रकार के हैं, वो अन्य अन्य कौन से पद होते हैं, दस पद बताए, इसको पद कहेंगे। मिला आपको उसके पहले वाला पेज 53 नंबर का? यहाँ जीवों की उत्तर भेद रूप इन दस अवस्थाओं में से प्रत्येक पद की अपेक्षा क्षेत्र का विचार न करके सामान्य रीति से विचार किया है। जब हम कहेंगे सामान्य से पूरा लोक है, तो नौ पदों में से जहाँ जिस पद में एप्लीकेबल होगा उसी अपेक्षा से पूरा लोक है। हर पद की अपेक्षा पूरा लोक नहीं है। आहारक शरीर जाता है तो उस अपेक्षा से पूरे लोक में गमन नहीं होता है। नौ में से जो जहां एप्लीकेबल है, जैसे हम कहते हैं कर्म की स्थिति इतनी है 70 कोड़ा कोड़ी, परंतु किस अपेक्षा से? तो मोनी मोनी में भी दर्शन मोनी है और उसमें भी वो तो मिथ्यात्व, तो उसकी अपेक्षा नहीं किएंगे तो फिर सामान्य से कितने है? तो 70 कोड़ा। ऐसे ही जब यहां सामान्य से कह देते हैं पूरा लोक, तो उसमें प्रत्येक पद की अपेक्षा पूरा लोक नहीं है। तो यहाँ पांच पदों की अपेक्षा तो है ही नहीं पूरा लोक, ये बात बताना चाहते। ख्याल में आई एक बात यहाँ पर? अब आगे कहते नंबर दो के सामान्य तिरंच आदि जीव, दूसरा टेबल 56 पृष्ठ पर का ऊपर से दूसरा टेबल, उसमें सामान्य तिरंच नपुसक मत्स्य ज्ञानी आदि जो बताए हैं, तो कहते हैं विहारवत संस्थान और वैकृत समुद्घात को छोड़कर पांच पदों से सर्वलोक में रहते हैं। तेजस आहारक तो उनमें होता ही नहीं है, तो उनमें सात ही पद होते हैं। पहले क्रोध वाले में तो नौ के नौ पद होते हैं देखा था, तो नौ में से कितने होते उसके सर्वलोक उन्होंने बता दिया। अब यहाँ होते ही सात है और उसमें से पूरा लोक किस अपेक्षा से है? तो कहते विहारवत की अपेक्षा नहीं हो सकता और वैकृत समुद्घात की अपेक्षा भी पूरा लोक नहीं हो सकता। तो किस अपेक्षा से होगा? स्वस्थान से होगा, वेदना से होगा, कषाय से होगा, मारणांतिक से होगा और उपपाद से होगा। इसका कारण पहले के समान जानना चाहिए। ये बात ख्याल में आई यहाँ तक? अब आगे नंबर तीन के जीव, नंबर डालो उसमें, पहले वाला वो क्रोधमान माया लोभ वाला था, दूसरा सामान्य तिर्यंच आदि, तीसरे में किसको लिया था? एक केंद्रीय, हाँ अकेले केंद्रीय ले, चार पांच और छह नंबर डाल के रखेंगे। अब कहते हैं नंबर तीन के जीव वहां एक केंद्रीय तेजस का एक और वायु का एक लिए थे, ऊपर का पहला कॉलम 57 पृष्ठ का। ये जीव वैकृत समुद्घात को छोड़कर शेष पांच पदों से सर्वलोक में रहते। यहां विहारवत को क्यों छोड़ा? वो है ही नहीं है। जो है उनमें से कितने लेना है? ये जो तीन नंबर का जो हमने देखा अभी लिस्ट जो है, एक केंद्रीय तेजस का एक और वायु का एक, उनमें विहारवत है ही नहीं है, तेजस भी नहीं है और आहारक भी नहीं है। तो नौ में से छह है, जो है उनमें से पूरा लोक किस अपेक्षा से है?
तो कहते हैं उनमें वैक्रियक समुद्घात को छोड़कर, क्योंकि वैक्रिया की अपेक्षा पूरा लोक हो नहीं सकता, उसको छोड़कर शेष जो पद है कौन से? स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणांतिक और उपपाय, इनकी अपेक्षा पूरा लोक है। इनमें से तेज कायिक और वायु कायिक जीवों का प्रमाण असंख्यात लोक है।
कितना है? हाँ, असंख्यात लोक। अग्नि कायिकों की संख्या मिनिमम है, वो कितना असंख्यात लोक है मालूम है? भूल गए आप अग्नि कायिकों की संख्या? हाँ हाँ बोलो। हाँ, 3.5 शलाकात्रे स्थापित करना। जैसे शलाकात्रे किसको कहना? जैसे हम दो संख्या से शुरू करते हैं, तो दो संख्या है ना, तो उसका विरलन कर दो, एक एक लिख दिया और हर एक के ऊपर दो दो लिखो, दो बार आए तो आपस में गुणा करो तो 4 आ गए। अभी दो संख्या से शुरू किया था तो विरलन राशि भी 2, देय राशि भी 2 और शलाका राशि भी 2, तो शलाका राशि 2 है तो जितनी शलाका राशि होगी उतने बार गुणा करना है। तो पहले 2 × 2 = 4 आए, अब क्या करना? अभी 4 को बिखेर दो, विरलन करो और हर एक के ऊपर 4 रखो तो आपस में गुणा करो, 256 आते हैं। तो 2 शलाका राशि कम होने खत्म होने के लिए 256 आ गया। अब दूसरी बार शलाका राशि स्थापन करो, कौन सी है वो? 256 भी शलाका है, वहां विरलन भी 256 है और देय भी 256 है। अब 256 × 256 करना वहां पर, वो एक बार गुणकार हुआ, जो राशि आई उसको विरलन देय करो, आपस में गुणा करो, वो दूसरा गुणाकार हुआ, यानी शलाका राशि में से 2 कम हुए, हमारी शलाका राशि 256 हुई है। फिर जो संख्या आई उसका विरलन देय करो, वो तीसरी बार शलाका, यानी उसमें से 3 घटाओ, तो ऐसे 256 बार करो, जो संख्या आएगी उतनी शलाका विरलन और देय करके फिर वही पूरा प्रोसेस उतनी बार करना। ये 3 बार शलाका हुई। जो महासंख्या हमने 2 से शुरू किया था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 2 था, बीच जो चौथी बार, ये तीसरी बार संख्या आएगी उसको फिर चौथी बार शलाका स्थापन करो और फिर उसमें पूरा नहीं लेना, आधा लेना। आधा कैसे? पहले 1, 2 और 3, हाँ उनका जो संख्या है टोटल वो उसमें से शलाका में से पहले माइनस कर दो। हाँ उतना याद है उन्हें, उन्हें अलग अलग लेटर्स दिए थे हमने, तो इसको कहते शलाका त्रय स्थापित करना। पर हमने शुरू यहां से किए थे 2 संख्या से। अभी हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ जो अग्नि का एक की निकालना है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट है लोक, एक लोक, एक लोक से शुरू करना है। तो एक लोक को विरलन करो, एक लोक को देय करके दे दो और एक लोक को शलाका में स्थापित करो। यानी पहली बार हमने 2 बार गुणकार किया, उसके बाद लोक में जितने प्रदेश है उतनी बार हो जाएगा। इस तरह से वो शलाका त्रय कितने हो गई वो संख्या पूरी सारी। मेरे ख्याल से ये तो उनकी गुणकार शलाका आती है, अभी वो तो और झबेला बड़ा है। तो ये मिनिमम वाले हैं इनकी संख्या अग्नि कायिकों की, उनमें असंख्यात गुना आगे वाले जो संख्या है। तो यहाँ क्या कहते हैं, फिर भी उनका कथन क्या होगा? अग्नि कायिक कितने हैं? असंख्यात लोग। वायु कायिक कितने हैं? असंख्यात लोग। कौन से अग्नि कायिकों की द्विरूप? नहीं, लोक घनागण में भले हो परंतु ये द्विरूप वर्गधारा में आएंगे, क्योंकि उसकी गुणकार शलाका आती है। हमने जो हम अभी हिसाब निकाला ना, गुणकार शलाका किसको कहना? गुणकार अभी हमने कितने बार गुणकार किया? पहले 2 बार किया, फिर 256 बार किया, फिर तीसरी बार किया और फिर चौथी बार किया, इनकी टोटल उसको कहेंगे गुणकार शलाका। ये तो गुणकार शलाका केवल इतनी आई, वो संख्या मूल में आई वो तो बहुत आगे, फिर आगे चलकर असंख्यात स्थान जाने पर उसकी वर्गशलाका आती है, गुणकार शलाका आती है, उसका अर्धच्छेद आती है राशि, प्रथम वर्गमूल और फिर उसका संख्या आएगी अग्नि कायिक की। तो इतनी बड़ी अग्नि कायिकों की संख्या है।
तो यहाँ क्या कहते देखो, फिर भी उसका सामान्य कथन क्या है, असंख्यात लोग, और हम उससे भी सामान्य कहने तो असंख्यात है। ये असंख्यात का भी हमें एहसास नहीं होता कितनी बड़ी संख्या है। हम अभी यहाँ चले जाओ आप सी बीच पर, हाँ इतना बड़ा समुद्र है, हम देखते हैं एक जल बूंद में असंख्यात जीव होते हैं, जलकाई, तो उतने सारे में कितने होंगे। फिर भी वो सारे अभी इतने हम जितना दिखाई दे रहा है, और हमें जो मालूम है वहाँ कितने हो गए, और पूरे विश्व में कितने जलकाई हो गए, फिर भी वो अनंत में नहीं होते, असंख्यात में होती है संख्या। तो जब हम अनंत कहते हैं तो अनंत क्या होगा? कहाँ तक आए हम? लेकिन इनमें से देखो, इनमें से तेज कायिक और वायु कायिक जीवों का प्रमाण असंख्यात लोक है, मिला। इसलिए एकेंद्रियों के समान इनके भी सर्वलोक में पाए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहा? जीवों का प्रमाण असंख्यात लोक है, तो ये क्षेत्र जब कहना है तो किस कैसे उसका हिसाब करेंगे? एक जीव के इतने प्रदेश, तो इतने जीवों के कितने प्रदेश, इस तरह से भी उसका पूरा लोक वहां कहते हैं। नंबर चार के जो बादर एकेंद्रिय आदि जो लिस्ट हमने देखी थी, बादर एकेंद्रिय आदि, और नंबर छह के बादर एकेंद्रिय अपर्याप्त आदि जीव केवल मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक में पाए जाते हैं, क्योंकि ये जीव राशियां बादर होने से सब जगह रह तो नहीं सकती। बादर है तो वहां बादरों का आधार की अपेक्षा रहते हैं, तो छह पृथ्वियों के आधार से ये रहेंगे, अन्यत्र नहीं रहेंगे। और फिर ये सब सूक्ष्म जीवों में जाकर उत्पन्न होने के पहले मारणांतिक समुद्घात करते हैं। ये जीव सूक्ष्म में उत्पन्न होंगे तो उससे पहले मारणांतिक करके जहाँ सूक्ष्म है वहां जाते हैं, तो मारणांतिक की अपेक्षा पूरे लोक में पाए जाते हैं। है असंख्यात, बादर कहो सूक्ष्म कहो, एकमात्र निगोद है वो अनंत है, बाकी सभी जीव असंख्यात है। तो ये मारणांतिक समुदाय करते हैं तब इनका वर्तमान क्षेत्र सर्वलोक पाया जाता है, तथा लोक के किसी भी भाग से सूक्ष्म जीव आकर जब इन बादरों में उत्पन्न होते हैं, सूक्ष्म जीव सब जगह रहते हैं और अपने स्थान में मर गए और विग्रह गति में आए, तो उनको क्या कहेंगे? बादर में उत्पन्न होने वाले, तो बादर कहेंगे उनको। तो पूरे लोक में से आते हैं तो उनके उपपाद क्षेत्र कितना है? पूरा लोक, तो उसका पूरा लोक क्षेत्र पाया जाता है। इस प्रकार इनका मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पद की अपेक्षा सर्वलोक में वर्तमान निवास बन जाता है। वर्तमान निवास यानी वर्तमान में कहाँ रहते हैं? पूरे लोक में, कोई मारणांतिक अपेक्षा और कोई उपपाद की अपेक्षा। नंबर पांच के ये देख लेना कोष्टक, बीच में हमने जो देखा था ना सूक्ष्म वाले, नंबर पांच के एकेंद्रिय सूक्ष्म आदि जीव अपने पांचों पदों से सर्वलोक में रहते हैं। कौन से पांच पद? हाँ देखो, स्वस्थान विहारवत उनमें नहीं होता है, स्वस्थान में है, वेदना है, कषाय है, मारणांतिक है और उपपाद है। इस कोष्टक के अनुसार सभी जीवों का जिन पदों की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र नहीं पाया जाता वह प्रकृत में उपयोगी नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ कौन सी लिस्ट है? जहाँ पूरा लोक है, सर्वलोक, जिस पद की अपेक्षा पूरा लोक है उनको यहाँ लिखा है, बाकी तो क्रॉस कर दिया। विशेष जिज्ञासुओं को उसे क्षेत्रानुयोग द्वार से जान लेना चाहिए। क्षेत्र की बात पूरे एक धवला पुस्तक में थी ना, क्षेत्रानुयोग। अब मनुष्य गति में
हिरण्य गति के साथ जो जो कुछ वहां है उसकी बात वहां बता दी उन्होंने। अब मनुष्य गति की बात करेंगे। मनुष्य गति में सामान्य मनुष्य अभी जो आलाप होते हैं कथन, एक तो सामान्य वाला एक भेद उसका, मनुष्य पर्याप्त, इसमें केवल पर्याप्त मनुष्यों की बात करेंगे, मनुष्यनी, इनमें मोनीय विभक्ति वाले कितने क्षेत्र में रहते हैं, कि लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक के अलावा अन्यत्र बाहर नहीं पाए जाएंगे। ढाई द्वीप जो कहने में आता है वो पूरे लोक का असंख्यातवा भाग है। मोनीय अविभक्त, असंख्यातवा भाग, क्योंकि वो कितने हैं मरने वाले उसके हिसाब से उसका क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे। हाँ आगे पढ़ेंगे हम उसको। तो लोक के असंख्यातवे भाग क्षेत्र में यहाँ केवली समुदाय को नहीं लिया है, मोहनीय की विभक्ति वाले लिए। हाँ मोहनीय अविभक्ति वाले उक्त जीवों का कथन ओग के समान है। ओग में क्या देखा था, लोक का असंख्यातवा भाग, लोक का असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक, यानी वात वाले को छोड़कर वाला लिया था ना हमने। हाँ। वो केवली समुदाय की अपेक्षा लेना उसमें। इसी प्रकार पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, यानी जहां जहां मनुष्य उस मार्गणा में आते हैं तो उसमें यही कथन होगा। अपगत वेदी, अकषायी, संयत, यथाख्यात संयत, शुक्ल करो उसको, शुल्क हुआ, शुक्ल लेशा वाले, सम्य दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि जीवों के कथन करना चाहिए विशेषार्थ, और बी हुआ उबी करो उसको। इन उपर्युक्त मार्गणाओं में स्थित जीवों में कितने पद होते हैं इसका ज्ञान कराने के लिए नीचे कोष्टक दिया जाता है। पहले में पहले मनुष्य पर्याप्त, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त, शुक्ल लेशा, सम्य दृष्टि और क्षायिक सम्य दृष्टि। जब ऐसा कहेंगे तो उसमें तो यहाँ कितने पद लिए हैं, नौ है कि दस है, दस है ना, केवल भी लिए है। हाँ तो मनुष्य पर्याप्तों में ये दस के दस हो सकते हैं। अब संयतों में उपपाद वाला नहीं होगा। मनुष्यनि में तेजस और आहार छोड़कर बाकी, अकषायी में और अपगत वेदी में यथाख्यात संयतों में वो वेद अकषायी है, अपगत वेदी आदि है और यथाख्यात संयत है, तो उसमें वेदना कषाय नहीं है, वेदना समुद्घात नहीं है, कषाय समुद्घात नहीं है, वैकिरेक समुद्घात नहीं है, तेजस नहीं है, आहारक नहीं है, केवली समुद्घात है, मारणांतिक समुद्घात हो सकता है, क्योंकि अकषायी अपगत वेदी जो सब यथाख्यात संयत लिए है तो ग्यारहवें गुणस्थान वाला भी उसमें होता है, उपपात तो नहीं हो सकता, जन्म नहीं ना उस गुण स्थान में या उस संयत के साथ। मोनीय विभक्ति वाले और मोनीय अविभक्ति वाले ये सभी जीव केवली समुद्घात के प्रतर और लोक पूर्ण अवस्थाओं को छोड़कर शेष संभव सभी पदों के द्वारा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। सभी पद लिए हैं तथा उक्त सभी जीव प्रतर समुद्घात की अपेक्षा लोक के असंख्यात बहुभागों में और लोक पूर्ण समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक में रहते हैं। देखो यहां मरकर कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी मरकर मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, परंतु वो जीव कितने हैं, असंख्यात हो गए, या असंख्यात भी अगर मनुष्यों की अपेक्षा लेते अपर्याप्त, तो यहाँ अपर्याप्त वाला आलाप लिया ही नहीं उन्होंने, मनुष्य पर्याप्त लिया, पहले सामान्य मनुष्य लिया था, परंतु फिर भी उसके भी कैलकुलेट करेंगे तो लोक का असंख्यात वा भाग होगा। हाँ, दहाई द्वीप में ही होते हैं, उनका स्वक्षेत्र तो उतना ही है, और उपपाद और मारणांतिक भी करेंगे तो भी वो तो फ्यू है, बहुत गिने चुने हैं ना, इसलिए उसका लोक का असंख्यात वा भाग ही हो जाता है। बाकी जहां वो अनंत वाले घटित होते तो पूरा लोक उसमें ले लेते हैं, सूक्ष्म एकेंद्रिय बादर एकेंद्रिय उसकी अपेक्षा से पूरा लोक लिया था, इनमें वो सब नहीं लेना है। मौनीय विभक्ति वाले बादर वायु का एक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, लोक के संख्यातवे भाग में क्षेत्र में रहते हैं। पहला यो क्षेत्र में, पहला विकल्प पूरा लोक में, दूसरा विकल्प बताया लोक के असंख्यातवे भाग में, अभी आगे वाले बता रहे हैं, क्योंकि वो मनुष्य गति से इसका कुछ लेना देना नहीं है। मनुष्य गति की बात चल रही थी, वहां तो लोक के असंख्यातवे भाग में रहते हैं, उसकी अपेक्षा से कुछ बात बताई, और केवली की अपेक्षा तीनों विकल्प होते हैं। अब यहाँ जो नई बात निकाली यहाँ पर कि बादर वायु का एक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं, तो लोक के संख्यातवे भाग क्षेत्र में रहते हैं। इनका मारणांतिक समुद्घात और उपपाद पदों की अपेक्षा भी वर्तमान काल में सर्वलोक क्षेत्र नहीं है, वर्तमान काल की बात है। जब क्षेत्र कहते हैं तो वर्तमान काल को लेना है, क्योंकि इनमें लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही मारणांतिक समुद्घात और उपपाद वाले जीवों की ही प्रधानता देखी जाती है। विशेषण, बादर वायु का एक पर्याप्त जीव वर्तमान काल में स्वस्थान स्वस्थान वेदना कषाय मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में ही रहते हैं, यानी मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा भी उसको लोक का संख्यात्वा भाग कहा। क्योंकि पांच राजु लंबे और एक राजु प्रतर रूप क्षेत्र में, ये प्रतर रूप क्या होता है मालूम है, एक राजु एक बाजू और दूसरी बाजू भी एक राजु, हाँ एक राजु का स्क्वायर, उसको प्रतर राजु कहेंगे या राजू प्रतर कहेंगे या प्रतर क्षेत्र कहेंगे, जैसे घर लेना है तो कैसे स्क्वायर फुट क्षेत्रफल लेते हैं वैसा ही। तो पांच राजू लंबे, पांच राजू ऊपर तक, ये वायु का एक की विक्रिया होती है, पांच राजू ऊपर तक चले जाते हैं तो वहां तक उनकी विक्रिया होती है, और एक राजू प्रतर रूप क्षेत्र में ही इनका आवास पाया जाता है, जो कि लोक के संख्यातवे भाग प्रमाण ही होता है। हाँ, मध्य लोक से पांच राजू, वायु का एक तो सब जगह है, वैसे हर एक पृथ्वी के नीचे वो तीन तीन हाँ वात वलय है, ये विक्रिया करके कहाँ जाते है उसकी बात है। यद्यपि वायु का एक जीव उक्त क्षेत्र के बाहर भी मारणांतिक समुद्घात करते हैं और उक्त क्षेत्र से बाहर के अन्य जीव भी इनमें उत्पन्न होते हैं, पर उनका प्रमाण स्वल्प है, अल्प है, इसलिए उनका अगर क्षेत्र गिनेंगे तो भी वो असंख्यातवे भाग में घटित होता है। अतः इतने मात्र से इनका क्षेत्र लोक का संख्यात बहुभाग या सर्वलोक नहीं बन जाता, तथा वैकिरेक समुद्घात की अपेक्षा बादर वायु का एक पर्याप्त जीव लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। स्वस्थान वेदना मारणांतिक और उपपाद की अपेक्षा संख्यात्वे भाग में है और विक्रिया की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं, यानी उनके स्वस्थान की अपेक्षा पांच राजु बताया है, हाँ, और विक्रिया की अपेक्षा असंख्यातवा भाग।
पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगी। तेजो का एक किस सबसे कम है? यहाँ जो संख्यात्मा भाग वाला विकल्प है वो वायु का एक में ही होता है, इसलिए तेज का एक को अलग से नहीं लिया है इसमें, वायु का एक को संख्यात्मक भाग में गिनाया उन्होंने। बादर अग्नि का एक तो उससे भी अल्प है, वो सबसे कम है। बादर अग्नि का एकों की संख्या सबसे कम है। पांचों मनोयोगी और पांचों वचन योगियों में ये पांच मनोयोग पांच वचन योग कौन से जीवों में पाए जाएंगे? संगी पंचेंद्रियों में होगी ना पांचों मनोयोगी, और पांचों वचन योगी चाहिए। इंद्रियादि में वचन योग है परंतु उनमें तो दो ही होते हैं, इसलिए उसको नहीं लिया यहाँ पर। मौनीय विभक्ति वाले और मौनीय अविभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र में रहते हैं। नहीं समझा? देव भी लेना, नारकी भी लेना, मनुष्य भी लेना, तिर्यंच भी लेना, मनोयोगी और वचन योगी जो है वो कहाँ पर हो गए? वो असंख्यात भाग ही घटित होता है। इसी प्रकार मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनपरे ज्ञानी, चक्षुदर्शनी, अवधि दर्शनी, चक्षुदर्शनी के बाद कोमल गांव है क्या? अच्छा। और संगी जीवों के कहना चाहिए, यानी उनमें भी यही कथन होगा, लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। औदारिक काय योगियों में मौनीय विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? अभी औदारिक काय योग है पूरा लोक, क्योंकि सूक्ष्म जीव पूरे लोक में है ना एक इंद्रिय। अविभक्ति वाले मनोयोगियों के समान भंग है। अविभक्ति वालों में जो अविभक्ति वाले हैं तो मनोयोगियों के समान भंग है। अविभक्ति वालों में कौन सा है? हाँ, वो अविभक्ति वाले की बात चल रही है। मौनी के अविभक्ति वाला का भंग कैसा है? तो मनोयोगियों के समान है। इसी प्रकार औदारिक मिश्र काय योगी, अचक्षुदर्शनी, यानी कैसा भंग है उसमें? विभक्ति वाले, अकेला मनोयोग लिया ना उन्होंने, अविभक्ति वाले है। अविभक्ति वाले जो है मनोयोगी में ये उल्टा कैसे है? अविभक्ति वाले मनोयोगियों के समान भंग है, इनमें अविभक्ति वाला लेना। देखो जो मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी वगैरह जो लिए ना, उनमें विभक्ति वालों का उन्होंने बता दिया। सर्व विभक्ति वाले कितने हैं? तो लोक का असंख्यात भाग। और उनमें अविभक्ति वाले कितने कहाँ रहते हैं? वो भी लोक के असंख्यात भाग। ये जो यहाँ हमने लिस्ट देखी कौन सी? मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, अवधि ज्ञानी आदि, और अविभक्ति वाले कहाँ पॉसिबल है? बारवा गुणस्थान, तो लोक का असंख्यात भाग में ही रहते हैं, ख्याल है ना? हाँ। इसी प्रकार औदारिक मिश्र का योगी, अचक्षुदर्शनी, आहारक जीवों के कहना चाहिए। इनमें विभक्ति वाले भी है, अविभक्ति वाले भी है। कार्मण का योगियों में मौनीय विभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? सर्वलोक में रहते हैं। मौनीय अविभक्ति वाले जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? लोक के असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक क्षेत्र में रहते हैं। कार्मण का योग जो प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में पाया जाता है। अभी हमने जो ऊपर जो लिस्ट देखी ना, औदारिक मिश्र का योगी और विभक्ति वाले कितने लोग कहाँ रहेंगे, इनको सोचने दो जरा। औदारिक मिश्र काय योगी और मौनीय के विभक्ति वाले,
औदारिक मिश्र का योग किसके होता है? तिरंचों में होगा ना, वो पूरे सूक्ष्म जीवों में औदारिक मिश्र काय होगा कि नहीं होगा? सर्वलोक आएगा। और औदारिक मिश्र में अविभक्ति वाले कितने क्षेत्र में रहेंगे? औदारिक कब होता है? कपट में, तो लोक का असंख्यात भाग होगा। वैसा ही अचक्षुदर्शनी में लेना है, अचक्षुदर्शनी सभी एकेंद्रियों में है तो पूरा लोक, और अचक्षुदर्शनी अविभक्ति वाले ने बारवा गुणस्थान लेना तो लोक का असंख्यात भाग। ऐसा ही आहारक जीव लेना, आहारक और विभक्ति वाले पूरा लोक, क्योंकि सभी आहारक है ना, क्या है, शरीर के परमाणु ग्रहण चल रहे हैं ना हर समय, और आहारक होते हुए भी अविभक्ति वाले, बारवा है, तेरवा है, आहार कायोगी वाले नहीं, आहार मार्गणा, आहार मार्गणा, तो वहां भी वो आहारक और अविभक्ति वाले, हाँ, लोक का असंख्यात भाग। तो केवली समुदाय की अपेक्षा से लोक पूरा होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अनाहारक है, कारमान का योग है ना, जब केवली समुदात होता है प्रतर और लोकपूरण, तो वहां तो उनके अनाहारक होती है अवस्था। विशेषार्थ, पहले ऊपर कहे गए मार्गना स्थानों में संभव पदों के दिखलाने के लिए कोष्ठक दिया जाता है। यह मार्गना बताइए और आगे उसके कौन कौन से पद संभव है उसकी बात यहाँ लिखिए। ये 10 के 10 पद ऊपर लिख दिए हैं उन्होंने। पांचों वचन योग मनोयोगी, पांचों वचन योगी ब करते हैं, हिंदी वाले व को ब और ब को व करते हैं, और मनपरे ज्ञानी, तो उनमें पांच मनोयोग है और वचन योग है, तो उपपाद में ये योग पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे, इसलिए उसको नहीं लिया है। उपपाद यानी जन्म का पहला समय, वहां तो मनोयोग वचन योग नहीं होगा, कारमान का योग हो सकता है, मिश्र हो सकता है ना, और मन परे ज्ञानी है, तो उनमें वो केवली समुद्घात होगा कि नहीं होगा? पांचों मनोयोग चाहिए। तो नहीं होता है, इसलिए उसको नहीं है। मन परिज्ञान भी 12वें तक होगा, केवली समुदात में मन परिज्ञान की बात ही नहीं, केवल ज्ञान है वहां पर, इसलिए ये दो भंग छोड़कर, दो ये पद छोड़कर बाकी पद हो सकते हैं। अब मति श्रुता अवधि ज्ञानी, अवधि दर्शनी, चक्षु दर्शनी, अचक्षु दर्शनी और संगी, ये जो मार्गणा है उनमें कौन कौन से हो सकते हैं? केवल ज्ञान, केवल समुद्घात नहीं है, उसको छोड़कर उपपाद होगा कि नहीं होगा? मति श्रुता अवधि ज्ञानी है, सम्यक ज्ञान की बात है, तो अपर्याप्त अवस्था में सम्यक ज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता? जन्म के पहले समय में नहीं होता, आप क्या कहते हैं? होता है, जो चौथे गुणस्थान में मरकर चला जाएगा दूसरे भव में, उसके है ना, उपपाद अवस्था में भी मति है, श्रुत है, अवधि है, अवधि दर्शन है, चक्षु दर्शन है, चक्षु दर्शन है, संगी है। यानी उसका कायम रहते ना, अगले भव में वो सम्यक के सही जाता है, तो वहां मति श्रुत अवधि ये सब है उसके। अब औदारिक का योग लेना है। औदारिक का योग में यहाँ कौन सा नहीं है? तो आहारक नहीं है, क्योंकि जब आहारक होता है समुद्घात, तो आहारक और आहारक मिश्र, पहले तो आहारक का योग होगा ना, वो समुद्घात करके जाता है, तो उसके आहारक का योग पाया जाएगा, और बाद में मनोयोग वचन योग होगा, वो उसमें तो ले लिया उन्होंने आहारक। और कौन सा नहीं होगा औदारिक का योग में? उपपाद नहीं होगा, क्योंकि उपपाद अवस्था में कारमण होगा या मिश्र होगा। औदारिक मिश्र का योग में, जब मिश्र का योग होता है तो विहारवत स्वस्थान नहीं होगा, क्योंकि विहार किस में होता है? औदारिक मिश्र वाले। औदारिक मिश्र तो एकेंद्रियों में भी पाया जाता है और विकलेंद्रियों में भी होगा, पंचेंद्रियों में भी होगा। जो जो औदारिक वाले हैं तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने तक उनका औदारिक मिश्र पाया जाता है। तो उसमें ये विहार व्रत क्यों नहीं लिया? हाँ, शरीर पर्याप्ति नहीं पूरी हुई तो क्या क्या ऐसा बना कि विहार व्रत नहीं होता है? विहार गति नाम कर्म का उदय नहीं हुआ, वो कब होता है? शरीर पर्याप्ति पूरी होते ही होता है, इसलिए औदारिक मिश्र वाले को विहार व स्वस्थान नहीं होगा। वैकिरिक समुदाय भी नहीं है, तेजस आहारा की तो कोई सवाल ही नहीं है वहां पर, परंतु केवली समुद्घात हो सकता है। कौन से हुए होता है? कपाट अवस्था में है ना, औदारिक मिश्र। अब आहारक काय योग की बात है, आहारक काय योगी वाले के स्वस्थान भी है, विहार भी है, वेदना कषाय वैकिरेक तेजस। अरे इसको आहारक काय योग अवस्था में तेजस कैसा लिया? पहले नहीं कहा आहार मार्गण है, आहार का क्यों लिखा है? आहारक जीव है वो, कार्मण का योगी है। नहीं नहीं, यहाँ लिखा है ना अचक्षुदर्शनी औदारिक मिश्र का योगी, अचक्षुदर्शनी आहारक जीवों के कहना चाहिए, आहारक इतना ही चाहिए। आहारक का लिखा है ना वो, क्योंकि औदारिक मिश्र वो चक्षुदर्शनी कहाँ डाला? ऊपर डाला। आहार चाहिए, क्या कहते आप? एक कान नहीं चाहिए? हाँ हाँ, उन्होंने जो यहाँ लिखा है ना, उन्होंने ये तीनों को इकट्ठा किया था, उदारिक मिश्र का योगी और चक्षु दर्शन और आहारक जीवों के कहना चाहिए, और उसके बाद कारमान का योगियों में वो बात की थी उन्होंने। आहारक में उपवाद होगा रुजु गति से जाने वाले के का योग, आहारक यानी वो आहार ग्रहण करता है ना, योग उसका मिश्र है, परंतु नौकर्म का ग्रहण शुरू हो गया उसका। एक कहा निकाल देना, आहारक जीव। हाँ, हम पढ़ेंगे अभी आगे। आहारक लेना केवल, यानी जिसका ग्रहण चल रहा है आहारक वैसा लिया। नहीं, उन्होंने पहले लिस्ट दी थी ना, देखो पहले पृष्ठ पर लेना, वहाँ पर औदारिक मिश्र का योगी और चक्षुदर्शनी आहारक जीव, इनको सबको इकट्ठा लिया था। तो वहाँ अचक्षुदर्शनी की बात ऊपर उन्होंने बता चुके थे मतिशुता अवधि के साथ। तो जिनमें जो जो पद होते हैं उसकी अपेक्षा यहाँ ग्रुपिंग अलग किया है, कौन कौन से पद किसमें संभव है उसकी अपेक्षा से ग्रुप्स अलग बनाए। अब आगे पढ़ेंगे पांचों, उनके असत्य और उभय नहीं होते हैं। पांचों मनोयोग कब कब तक है? पांचों ही कब तक है? पांचों ही कब तक है? तो बारहवें तक है, इसलिए वहां केवली को नहीं लिया। और केवली में मनोयोग होता नहीं ऐसा नहीं कहा, अकेले मनोयोग नहीं लिया उन्होंने, पांचों मनोयोग लिया। पांचों का अर्थ है पांचों ही जहां पॉसिबल है, पांचों ही जहां पॉसिबल है। केवली में तो पांचों नहीं होते हैं इसलिए उसको छोड़ा। इन मनोयोगी आदि मार्गणाओं में क्षेत्र का कथन ऊपर किया ही है, अतः जहाँ स्वस्थान आदि जिस पद की अपेक्षा विभक्ति वाले
या संभव अविभक्ति वाले जीवों के जितना क्षेत्र संभव हो उसे घटित कर लेना चाहिए। जहाँ जितना है असंख्यात भाग है, ये कितना है वो वहाँ घटित करना चाहिए। कथन में और कोई विशेषता न होने से यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ कार्मण का योग में पांच पद बतलाए हैं। देखो, स्वस्थान बतलाया है, वेदना बताया, कषाय बतलाया, केवली और उपपाद। पर तत्वतः यहाँ केवल समुदात और उपपाद ये दो पद ही संभव है। शेष तीन पद अपेक्षा विशेष से कहे गए, विशिष्ट अपेक्षा की बात वहां लिखी है। कार्मण का योगियों में जो स्वस्थान, वेदना और कषाय बताया है वो विशिष्ट अपेक्षा से बताया है। इस प्रकार क्षेत्र प्ररूपणा समाप्त हुई। क्षेत्र में तो वर्तमान की बात होती है और स्पर्शन में वर्तमान तो है ही है, अभी तक जितने जीव हो चुके और उनके भूतकाल में उस मार्गणा के जीवों के द्वारा जितना क्षेत्र स्पर्शित है उसको वर्तमान प्लस भूतकाल, और उसमें तो भविष्यकाल घटित हो ही जाता है, क्योंकि भूतकाल में जो रोके आए भविष्यकाल में वही होने वाला है उस मार्गणा के द्वारा। अब स्पर्शन अनुगम की अनुगम की बात करेंगे। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। उनमें से ओग निर्देश की अपेक्षा मोनीय विभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, तो क्षेत्र में ही सर्वलोक आए तो स्पर्शन में भी पूरा लोक आ जाएगा, तो सर्वलोक स्पर्श किया है। मोनीय अविभक्ति वाले जीवों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, अविभक्ति वाले जब कहते हैं मोनीय के अविभक्ति वाले जीव तो कौन कौन से गुणस्थान वाले हो गए, 12, 13, 14। तो लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक, ये केवली समुदाय की अपेक्षा, और ये 12वीं की अपेक्षा भी असंख्यात भाग या दंड की अपेक्षा भी असंख्यात भाग लेगा। इसी प्रकार काय योगी भव्य और अनाहारकों के स्पर्शन का कथन करना चाहिए। कौन सा कैसा कथन करना चाहिए कि काय योगी जो है, विभक्ति वाले काय योगियों ने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है, तो पूरा लोक, और काय योग होते हुए अविभक्ति वाले हैं, काय योग है ना, कार्मण भी काय योगी है। हाँ, तो उसमें भी तीनों ऑप्शंस, असंख्यात भाग, बहुभाग और पूरा लोक। यहाँ काय योग कहा, उदारिक काय योग नहीं कहा, काय योग लेना। भव्य, भव्यों में भी यही बात होगी, भव्य विभक्ति वाले और भव्य अविभक्ति वाले। अनाहारकों के स्पर्शन का कथन करना चाहिए, या अनाहारकों में भी वो केवली समुद्रात घटित होगा, ये 14वें वाले भी घटित हो गए, तो लोक का असंख्यात भाग, असंख्यात बहुभाग और पूरा लोक। विशेषार्थ, स्पर्शन में त्रिकाल विषय क्षेत्र का ग्रहण किया है, पर भविष्यकालीन क्षेत्र और अतीतकालीन क्षेत्र में कोई अंतर नहीं है, दोनों समान हैं। अतएव इन दोनों में से एक अतीतकालीन क्षेत्र के कह देने से दूसरे का ग्रहण अपने आप हो जाता है, अतः उसे प्रायः पृथक नहीं कहा है, परंतु अतीत में गर्भित कर लिया है। इसी प्रकार जहाँ एक ही स्थान में दो स्पर्शन क्षेत्र कहे गए हैं, उनमें से पहला प्रायः वर्तमान काल की अपेक्षा और दूसरा अतीत काल की अपेक्षा कहा गया है, कहीं कहीं दोनों बातें बताते हैं। जैसे हमने स्पर्शनानुगम नाम का वो धवला का पूरी पुस्तक पढ़ी थी, तो उसमें पहले वर्तमान का बताते और फिर अतीत काल का बताते थे। वर्तमान काल की अपेक्षा जहाँ संख्यात जीव होंगे, तो मारणांतिक है मनुष्यों की अपेक्षा भी, भले वो कहीं से मरकर आए या कहीं मरणांतिक कर जाते हैं, तो अतीत काल की अपेक्षा तो हम पूरा लोग भी कह सकेंगे, वर्तमान में तो असंख्यात भाग कहेंगे। ये इसमें फर्क होगा विस्पर्शन और क्षेत्र में। यद्यपि ओग की अपेक्षा मोहनीय कर्मों से युक्त जीवों के केवली समुद्घात को छोड़कर शेष सभी पद पाए जाते हैं, पर यह मिथ्यात्व गुणस्थान की प्रधानता से स्पर्शन कहा गया है। क्योंकि मोहनीय कर्म से युक्त मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों ने अपने में संभव पदों से वर्तमान और अतीत दोनों कालों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। राजा श्रेणी कोई मार्गणा नहीं है। हाँ, तो मार्गणा में ऐसा हम कहेंगे मनुष्य जीवों ने कौन सा मार्गणा कौन सी हो सकती है? गति मार्गणा हो सकती है, इंद्रिय मार्गणा हो सकती है। तो मनुष्यों में मिथ्या दृष्टि जीव, तो मनुष्यों ने मिथ्या दृष्टि जीव तो मारणांतिक समुदात किया था या उपपात होकर आया था, उस अपेक्षा से लेना। एक विशिष्ट जीव को कैसे कहेंगे हम भविष्यकालीन? हाँ, परंतु वो जीव मोक्ष चला जाए, एक जीव की अपेक्षा नहीं होती, नाना जीवों की अपेक्षा होती है। मार्गणा जब हम कहेंगे तो मार्गणा जब हम मनुष्य कहेंगे तो अभी तक मनुष्य कहाँ कहाँ रह चुके हैं और कहाँ कहाँ विहार करके आए हैं। जब हम देव की अपेक्षा मार्गणा कहेंगे तो अभी तक जितने देव हैं, देव अवस्था में वो कहाँ कहाँ विहार करते हैं उसकी बात है। वो देव मनुष्य हुआ था या पहले वो सूक्ष्म एकेंद्रीय में था, वो उसके पहले नारकीय कहीं और था, उसकी बात नहीं लेनी है। उस मार्गणा वाले जीव कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कहाँ से वहाँ मरण करके आ सकते हैं, उसकी बात लेना है। स्पर्शन में वर्तमान क्षेत्र और स्पर्शन में क्या डिफरेंस है? वर्तमान में तो जीवों की संख्या थोड़ी है तो उसका क्षेत्र थोड़ा घटित होता है, परंतु अतीत काल ने पूरा अनादि से जो अनंत काल बीत गया है, अभी वर्तमान में कुछ गिने चुने मनुष्य मारणांतिक करके कहीं सूक्ष्म में भी चले जाएंगे, परंतु अतीत काल की अपेक्षा विचार करेंगे तो पूरा लोक हो सकेगा। एक एक पॉइंट पर कोई ना कोई जीव गया है ना मारणांतिक समुदात करके, इस तरह से ले सकते हैं। देखो, मोहनीय कर्म से युक्त मिथ्या दृष्टि जीव सर्वलोक में पाए जाते हैं, इसलिए इन जीवों ने अपने में संभव पदों से वर्तमान और अतीत दोनों कालों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्म से रहित जीवों के स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान और केवली समुद्धात, ये तीन पद पाए जाते हैं। क्योंकि रहित वाले कौन है? तो 12वें, 13वें और 14वें। इनमें से स्वस्थान स्वस्थान, विहारवत स्वस्थान को प्राप्त हुए तथा दंड और कपार समुद्धात गत मोहनीय कर्म से रहित जीवों ने वर्तमान और अतीत कालों दोनों कालों की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्श किया है। प्रतर समुद्घातगत उक्त जीवों ने दोनों कालों की अपेक्षा लोक के असंख्यात बहुभाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। वो अभी से अनादि से अनंत जीवों ने भी क्यों नहीं किया? उतने ही क्षेत्र में किया है ना उन्होंने समुद्घात प्रतर अवस्था में। और लोकपुरण समुद्घातगत उक्त जीवों ने दोनों कालों की अपेक्षा सर्वलोक का स्पर्श किया, यानी वर्तमान में एक समय में भी पूरा लोक स्पर्श करते हैं और अनादि से अगर सभी जीवों की अपेक्षा बात करेंगे तो भी पूरे लोक में ही उनके प्रदेश फैले हैं। लोक के बाहर तो जाएंगे नहीं, तो पूरा लोक कहेंगे। सामान्य कायोग्य और भव्य जीवों के स्पर्शन के कथन में उक्त कथन से कोई विशेषता नहीं है। अनाहारकों के कथन में थोड़ी विशेषता है। अनाहारक जब कहेंगे तो अनाहारक वो केवली समुदात में भी होता है और बाद में 14वें में भी। मोहनीय कर्म से युक्त अनाहारक जीव विग्रह गति में ही पाए जाते हैं, अतएव इनके स्वस्थान वेदना कषाय उपपाद ये चार पद होते हैं। इन चारों ही पदों से उक्त जीवों ने दोनों कालों की अपेक्षा सर्वलोक स्पर्श किया है। मोहनीय कर्म से रहित अनाहारक जीव प्रतर और लोकपुरण समुद्घातगत सयोगी और अयोगी जिन होते हैं। इनमें से अयोगी जिन दोनों कालों की अपेक्षा लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र को स्पर्श करते हैं, क्योंकि अयोगी कहाँ होंगे? मनुष्य लोक को छोड़कर बाहर नहीं होंगे, और समुद्घातगत वाले तो बहुभाग और पूरा लोक। प्रतर और लोकपुरण की अपेक्षा स्पर्शन ऊपर ही कहा जा चुका है, बाकी बात हम कल करें। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देख हो प्रेरणा भी।